श्रोताओं का स्वागत है ग्रंथसार में। आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे जो देखने में शायद आम लगे पर है बहुत खास।
हाँ, मानवीय रिश्तों, उम्मीदों और धोखे की कई परतें समेटे हुए।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी लेखिका मैरी मैकगैरी मॉरिस के मशहूर उपन्यास सॉन्ग्स इन ऑर्डिनरी टाइम्स की।
मैरी मैकगैरी मॉरिस समकालीन अमेरिकी साहित्य का एक बड़ा नाम है। उनकी खासियत है आम लोगों का जीवन दिखाना,
खासकर श्रमिक वर्ग का, उनके संघर्ष, उनकी अंदरूनी कश्मकश।
जी, और बहुत सच्चाई से। उनके लेखन में आपको समाज का आईना भी दिखेगा और किरदारों के मन की उथल-पुथल भी।
सही कहा। और सॉन्ग्स इन ऑर्डिनरी टाइम ये 1995 में आया था, है ना?
हाँ, और 1997 में जब इसे ओपराज बुक क्लब में चुना गया तब तो इसे जबरदस्त पहचान मिली।
बिल्कुल, ये उपन्यास इसका बेहतरीन उदाहरण है। कहानी हमें ले जाती है 1960 के दशक में।
जगह है वर्मोंट का एक छोटा सा औद्योगिक शहर एटकिंसन।
वो अमेरिका में बदलाव का दौर था और कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक परिवार, फमोले परिवार,
जो आर्थिक और क्या कहते हैं जज्बाती तौर पर बिल्कुल किनारे पर खड़ा है।
कहानी का दिल है माँ मैरी फमोले,
एक कैथोलिक महिला। उसका पति सैम शराबी था, उसे छोड़कर चला गया।
तो वो अकेली पड़ गई।
हाँ, और तीन बच्चे हैं, 17 साल का नॉर्म, 15 की एलिस और 10 साल का बेंजी। उन्हें पालने की जद्दोजहद।
सुनकर ही लगता है कि कितनी मुश्किलें होंगी। मैरी की हालत सच में दयनीय है।
दिन रात खटना, घर की साफ सफाई करना, फिर लोकल डाइनर में काम,
और फिर भी पैसों की तंगी।
पैसों से ज्यादा शायद अकेलापन और एक नाउमीदी, वो उसे खाए जा रही थी। ऊपर से शराब की लत भी घेर रही थी उसे।
और उसकी कैथोलिक आस्था का भी जिक्र है।
हाँ, बहुत गहरी आस्था। वो जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी, कोई मदद जो बस आ जाए और उसे इस सब से निकाल ले।
और बच्चे, वो कैसे सामना कर रहे थे इस सबका?
बच्चे भी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। नॉर्म सबसे बड़ा है तो उस पे जैसे बिना बाप के घर का मर्द बनने का बोझ आ गया। होशियार है लड़का, पर हालात उसे मौका नहीं दे रहे हैं।
और एलिस, 15 साल की उम्र, वो भी मुश्किल होती है।
हाँ, किशोरावस्था की उलझने, प्यार की तलाश, अपनी पहचान की तलाश, और अक्सर ये तलाश उसे ऐसी राहों पर ले जाती है जो शायद ठीक नहीं। और फिर है सबसे छोटा बेंजी, 10 साल का। वो बस देख रहा है
अपनी मासूम आंखों से।
हाँ, घर की गरीबी, माँ का संघर्ष, भाई बहन का तनाव, सब कुछ। बच्चे अक्सर बड़ों की दुनिया के मूक गवाह बन जाते हैं, है ना?
सही कहा है। और यही शायद उपन्यास के शीर्षक का मतलब छुपा है, ऑर्डिनरी टाइम,
साधारण समय। कैथोलिक कैलेंडर में ये वो दिन होते हैं जो बड़े त्योहारों के बीच आते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी।
तो मॉरिस शायद यही दिखा रही है कि जीवन की असली परीक्षाएं, असली ड्रामा इसी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में होता है।
कोई बड़ी जंग नहीं, बल्कि हर दिन का संघर्ष।
बिल्कुल, और इसी रोजमर्रा के संघर्ष के बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
हाँ, एक अजनबी आता है, ओमार डुवाल।
अच्छा,
कैसे? एक दिन मैरी की पुरानी खटारा कार रास्ते में बंद पड़ जाती है, और तभी जैसे कोई फरिश्ता हो, ये आदमी आता है, ओमार डुवाल।
और मदद करता है।
न सिर्फ कार ठीक करने में मदद करता है, बल्कि उसका अंदाज इतना करिश्माई है, बातें इतनी मीठी कि मैरी को लगता है जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई।
वाव, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा है। मुसीबत में फंसी अकेली औरत और एक मददगार अजनबी, लेकिन क्या वो सच में फरिश्ता है?
यही तो कहानी का पेंच है। ओमार खुद को एक मामूली सेल्समैन बताता है, साबुन बेचने वाला।
साबुन?
हाँ, घर घर जाकर साबुन बेचने वाला। लेकिन वो सिर्फ साबुन नहीं बेचता, वो बातों बातों में खुद को ईश्वर का बंदा, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जैसा भी दिखाता है।
अच्छा, तो यहीं से उपन्यास का असली तनाव शुरू होता है।
बिल्कुल, एक तरफ है मैरी की बेपनाह जरूरत, सहारे की, उम्मीद की, प्यार की, दूसरी तरफ है ओमार की रहस्यमयी शख्सियत और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें।
ये सोचना ही अजीब है, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है, इतनी धार्मिक है, वो कैसे एक ऐसे आदमी के जाल में फंस सकती है?
कहानी हमें इसी सवाल के गहरे पानी में ले जाती है। ये सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है,
हाँ,
ये उम्मीद के अंधेपन की कहानी है, अकेलेपन की, हताशा की, और कैसे एक शिकारी धीरे धीरे अपने शिकार को घेरता है।
और लेखिका इसे बहुत धीरे धीरे दिखाती हैं, परत दर परत।
हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, इसे स्लो बर्न कहते हैं ना, तनाव धीरे धीरे सुलगता है।
बिल्कुल।
चलिए किरदारों को थोड़ा और करीब से देखें। मैरी फर्मोइल वो इस कहानी का दुखद केंद्र हैं।
उसका अकेलापन इतना गहरा है कि उमर की थोड़ी सी तवज्जो भी उसे अमृत जैसी लगती है।
वो सिर्फ एक साथी नहीं ढूंढ रही,
वो एक उद्धारक ढूंढ रही है।
हाँ, जो उसे और उसके बच्चों को इस गरीबी और निराशा से निकाल ले।
और उसकी यही जरूरत उसे उमर के लिए आसान निशाना बना देती है।
बिल्कुल, वो उमर के चारों तरफ एक ख्वाबों का महल खड़ा कर लेती है। हर चेतावनी, हर शक सबको नजरअंदाज कर देती है।
यहाँ तक कि जब उसकी अपनी बेटी एलिस उसे आगाह करती है,
तब भी वो सुनने को तैयार नहीं। उसका आत्मधोखा बहुत मजबूत है।
उसकी आस्था, जो उसकी ताकत होनी चाहिए थी, वो भी उमर के हाथों का खिलौना बन जाती है।
हाँ, उमर धर्म की बातें करता है, छोटे मोटे चमत्कार दिखाता है, और मैरी का विश्वास और पक्का होता जाता है। ये देखना बड़ा दर्दनाक है।
उपन्यास में शायद इशारा है कि उम्मीद उसके लिए एक जरूरत बन गई थी।
हाँ, जिसे छोड़ना उसके बस में नहीं था, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना पड़े। उसकी उम्मीद एक ऐसी प्यास बन जाती है जिसे वो बुझाना चाहती है, भले ही पानी जहरीला क्यों ना हो। ये उसके किरदार का सबसे दुखद पहलू है।
और दूसरी तरफ है उमर डुवाल, उपन्यास का अविस्मरणीय खलनायक।
लेकिन वो कोई शैतानी ताकत वाला विलन नहीं है, वो एक परजीवी है।
परजीवी,
हाँ, एक क्लासिक ठग जो दूसरों की कमजोरियों को सूंघ लेता है और फिर उनका फायदा उठाता है।
उसका काम करने का तरीका क्या है?
पहले करिश्मा, हमदर्दी का मुखौटा। वो मैरी की जरूरतें समझता है, पैसे, सहारा, धार्मिक पुष्टि, और वही उसे देता है या देने का नाटक करता है।
लेकिन अंदर से,
अंदर से खोखला। उसका मकसद सिर्फ अपना फायदा है, रहने की जगह, पैसे और मैरी जैसी कमजोर औरत पर पूरा नियंत्रण।
यहाँ वो बुराई की साधारणता वाली बात दिखती है ना?
बिल्कुल, उमर कोई दैत्य नहीं है, वो बस एक स्वार्थी, मतलब परस्त इंसान है। बुराई अक्सर ऐसे ही मामूली चेहरों में छुपी होती है।
और दिलचस्प बात यह है कि वो बदलता नहीं है।
नहीं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका मुखौटा धीरे धीरे उतरता जाता है और उसका असली परजीवी रूप सामने आता है।
किताब में भी शायद एक इशारा है कि वो असल में साबुन नहीं, उम्मीद बेच रहा था।
हाँ बिल्कुल, और उस दौर में, उस माहौल में ऐसी झूठी उम्मीद के खरीदार आसानी से मिल जाते थे। वो जैसे अमेरिकी सपने के उस बिगड़े हुए रूप का प्रतीक है,
जो मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों को ठग कर हासिल किया जाता है।
सही।
लेकिन इस घर में उमर का जादू सब पर नहीं चलता। मैरी की बेटी एलिस,
हाँ एलिस, वो शुरू से ही शक करती है और वो इस कहानी में एक बहुत अहम मोड़ लाती है।
वो इस परिवार की आवाज है, उसकी अंतरात्मा।
बिल्कुल, वो अपनी माँ के बिल्कुल उलट है। जहाँ मैरी ख्वाबों में खोई है, वहीं एलिस की नजरें हकीकत पर है। वो उमर के नाटक को लगभग तुरंत भांप लेती है।
वो थोड़ी तेज है, थोड़ी व्यंग्यात्मक।
हाँ, लेकिन अपने परिवार को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, खासकर माँ को लेकर।
उसका संघर्ष तो दोहरा है फिर, एक तरफ उमर का बढ़ता असर
और दूसरी तरफ अपनी ही माँ का अंधविश्वास, उसका इनकार। उसे वक्त से पहले ही घर में बड़े की भूमिका निभानी पड़ रही है।
और उसकी अपनी जिंदगी भी उलझी हुई है। लेस्टर स्टोनर के साथ रिश्ते का जिक्र था।
हाँ, वो एक शादीशुदा आदमी है। ये कहीं ना कहीं उसकी माँ की स्थिति का ही एक अक्स लगता है, जैसे गलतियों के पैटर्न दोहराए जाते हैं।
लेकिन एलिस का किरदार विकसित होता है।
हाँ, वो सिर्फ एक नाराज किशोरी नहीं रह जाती, वो एक मजबूत इरादों वाली लड़की बनती है, जो सच सामने लाने और परिवार को बचाने के लिए हिम्मत भरे फैसले लेती है।
उसकी नजरें तेज हैं। वो उमर को देखती है तो उसे कोई संत नहीं,
बल्कि एक मकड़ी नजर आती है, जो धीरे धीरे मीठे शब्दों का जाल बुन रही है, और वो जाल हर दिन कसता जा रहा है। ये रूपक बहुत सटीक है।
और बाकी बच्चे, नॉर्म और बेंजी, उनका क्या होता है सब में?
नॉर्म जो पिता की कमी महसूस कर रहा है, वो शुरू में उमर के मर्दाना अंदाज से शायद थोड़ा प्रभावित होता है।
शायद उसे उसमें पिता का रूप दिखता है।
हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी मोह भंग होता है, और ये उसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। ये दिखाता है कि माँ बाप के झगड़ों और गलत फैसलों का बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ता है।
और बेंजी, वो मासूम गवाह?
हाँ, वो बस देख रहा है। बड़ों की दुनिया का तनाव, उनके झूठ, उनका डर, वो सब उसकी मासूमियत पर भारी पड़ रहा है।
बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं ना माहौल को पढ़ना।
हाँ, किताब में कहा गया है कि बच्चे अपनी माँ के मूड को ऐसे पढ़ने लगते हैं जैसे किसान मौसम का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि उनका टिके रहना इसी पर निर्भर करता है।
कहानी आगे कैसे बढ़ती है? उमार कैसे अपनी पकड़ मजबूत करता है घर पे?
पहले हिस्से में उमार धीरे धीरे घर में अपनी जगह बनाता है। वो मैरी को उसके दोस्तों, पड़ोसियों से, यहाँ तक कि बच्चों से भी थोड़ा दूर करने लगता है।
अलग थलग करता है।
हाँ, वो चालाकी से मैरी की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, छोटे मोटे काम करके एक चमत्कार का भ्रम पैदा करता है।
और घर का माहौल, जाहिर तनाव बढ़ रहा होगा।
बहुत ज्यादा। एलिस खुलकर विरोध करती है, बहस करती है, लेकिन मैरी उसे झिड़क देती है। नॉम बीच में पिस रहा है।
उसे समझ नहीं आता किसकी तरफ हो।
बिल्कुल। और धीरे धीरे ओमार घर के पैसों पर भी नियंत्रण कर लेता है। मैरी अपनी कमाई उसे देने लगती है उसके आध्यात्मिक मिशन के लिए। घर की आर्थिक हालत और खराब होती जाती है।
ये तो जाल कसता ही जा रहा है।
फिर
पर्दा कब उठता है?
कहानी के दूसरे भाग में ओमार का मुखौटा धीरे धीरे चटकने लगता है। पास के किसी राज्य से एक महिला के गायब होने की खबर आती है।
और उसका हुलिया उमार से मिलता है।
कुछ कुछ उमार का चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा और नियंत्रण रखने की उसकी आदत अब ज्यादा साफ दिखने लगती है।
और एलिस, वो चुप नहीं बैठी होगी।
बिल्कुल नहीं। एलिस अपनी जासूसी जारी रखती है। वो सबूत इकट्ठा करती है, उमार के अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। और फिर आता है कहानी का चरम बिंदु।
क्लाइमैक्स।
क्या होता है उस वक्त?
उमार की क्रूरता का एक ऐसा रूप सामने आता है जिसे मैरी चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती।
शायद बच्चों से जुड़ा कुछ।
हाँ, या कोई ऐसा सच सामने आता है जिससे मैरी का बनाया हुआ सपनों का महल भर भराकर गिर जाता है। उसका भ्रम पूरी तरह टूट जाता है
उसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है
कि जिस आदमी को वो अपना उद्धारक समझ रही थी वो असल में एक भेड़िया है। ये तो बहुत ही दर्दनाक क्षण होगा मैरी के लिए, अपने ही हाथों अपने परिवार को खतरे में डालने का एहसास।
हाँ, और अंतिम टकराव बहुत जज्बाती होता है। एलिस की हिम्मत और साथ पाकर मैरी आखिरकार अपनी बची खुची ताकत जुटाती है।
और उमार को घर से निकाल देती है।
हाँ, उसे जाने को कहती है। ये सिर्फ एक आदमी को घर से निकालना नहीं है, ये मैरी का अपने घर, अपने बच्चों और अपनी इज्जत पर दोबारा हक जताना है।
और उमार चला जाता है।
जब उसका भेंट खुल जाता है तो उसकी सारी ताकत हवा हो जाती है, वो चला जाता है।
तो क्या अंत में सब ठीक हो जाता है? मतलब एक सुखदन?
नहीं, और यही इस उपन्यास की खासियत है। ये कोई परी कथा नहीं है। ओमार चला जाता है, लेकिन
अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता है।
हाँ, शर्म, पछतावा, आर्थिक बर्बादी, ये सब बना रहता है। मैरी को इस कड़वी हकीकत के साथ जीना है कि उसकी बेवकूफी ने उसके बच्चों को कितनी तकलीफ दी।
यानी परिवार वापस साधारण समय में लौटता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा।
बिल्कुल, वे बदल चुके हैं। इस अनुभव ने उन्हें जिंदगी का एक कड़वा सबक सिखाया है। मैरी की आस्था भी बदलती है।
अब वो बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करती।
नहीं, बल्कि रोजमर्रा के संघर्ष और अपनी हिम्मत में ज्यादा विश्वास पाती है। एलिस और मैरी का रिश्ता भी बदल जाता है, उसमें एक नई समझ आती है और शायद थोड़ी दूरी भी।
तो अंत उदास है, लेकिन शायद उसमें एक उम्मीद भी छुपी है, एक शांत सी उम्मीद।
हाँ, एक शांत उदास सी उम्मीद। ये एहसास कि असली ताकत शायद बाहरी मदद में नहीं, बल्कि परिवार के बिखरे हुए अधूरे से प्यार में है।
और रोजमर्रा की जिंदगी को हिम्मत से जीते रहने में असली चमत्कार शायद यही है।
बिल्कुल।
अगर हम मुख्य विषयों पर नजर डालें तो गरीबी और आर्थिक हताशा तो साफ तौर पर उभर कर आती है।
हाँ, कैसे ये हालात इंसान को कमजोर बना देते हैं, शोषण के प्रति संवेदनशील।
और फिर अमेरिकन सपने का वो बिगड़ा हुआ रूप जो उमार दिखाता है, शॉर्टकट, दूसरों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना,
पहलू है
सत्य, धोखा और सबसे बढ़कर आत्मधोखा। मैरी का किरदार तो इसका जीता जागता उदाहरण है।
और कैसे धर्म का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा सकता है, ये उमार के जरिए सामने आता है।
लेखिका की शैली की बात करें तो वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नैरेटर का इस्तेमाल करती हैं, मतलब बताने वाला सब जानता है।
हाँ, वो हमें मैरी के मन की बात भी बताता है और उमार के छिपे इरादे भी। इससे एक तनाव पैदा होता है
क्योंकि हम सुनने वाले अक्सर मैरी से पहले ही समझ जाते हैं कि उमार असल में क्या है।
इसे नाटकीय विडंबना कहते हैं और ये बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हुई है।
और कहानी की धीमी गति, वो स्लो बर्न,
हाँ, वो डर और अनिश्चितता को धीरे धीरे बढ़ाती है। छोटे छोटे प्रतीक भी हैं, जैसे उमार का साबुन बेचना,
जो शायद सतही सफाई या झूठे समाधान का प्रतीक हो
सकता है, या एटकिंसन शहर का वो दम घोटू माहौल जो मैरी के अकेलेपन को और गहरा करता है।
संवाद भी बहुत असली लगते हैं।
हाँ, आम लोगों की भाषा, उनका लहजा, उनकी रोजमर्रा की बातें, मॉरिस ने उन्हें बड़ी सच्चाई से पकड़ा है। ये सब मिलकर इस उपन्यास को एक यादगार और असरदार अनुभव बनाते हैं।
तो अंत में ये उपन्यास हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? शायद यही कि जीवन की असली लड़ाइयां और सबसे बड़ा साहस रोजमर्रा के साधारण समय में ही छुपा होता है।
हाँ, बड़े तूफानों में नहीं, और ये भी कि उम्मीद जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर वो अंधी हो।
लेकिन सबसे बड़ी बात इंसान की हिम्मत है,
जो टूटने और बिखरने के बाद भी फिर से जुड़ने और जीने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे कितने ही जख्म क्यों ना मिले। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।